समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज रविवार है, वे दिन जिसका इंतजार हमें पूरे सप्ताह रहता है। तो आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं कुछ नई ताजा उम्मीदों के साथ, त्योहारों के उल्लास के साथ, जिसमें जुड़ती है आस्था की एक नई धारा। जी हाँ, नवरात्र के छठे दिन के जाने वाली माँ कात्यायनी की विशेष पूजा, जो आस्था का संचार तो करती ही है बल्कि हमारे घरों में सुख समृद्धि भी लाती है। साथ ही सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में दुर्गा पूजा का वास्तविक उत्सव षष्ठी तिथि से ही आरंभ होता है।
ढाक बाजा काशर बाजा उल्लू दे अर शाख बाजा बछर पोरे आवारे लो माजे।
और सुभद्रा, अब अगर हम पश्चिम बंगाल की बात ही कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आज ही मध्य रात्रि में दुर्गा माँ की मूर्ति का चक्षुदान किया जाता है, जो इसे हम अलग अलग पंडालों में जाते हैं तो वहाँ पे जो दुर्गा माँ की मूर्ति होती है मध्य रात्रि के समय में शंख और ध्वनि के डाक की ध्वनि के साथ में माँ का चक्षुदान किया जाता है। इसी दिन बल्कि माँ दुर्गा को अपने पति के निवास को छोड़कर पृथ्वी पर अपने भक्तों के साथ निवास करने के लिए आमंत्रित करने हेतु बोधन, ओमोन्ट्रॉन, अधिवास जैसे विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। हेलो सुभद्रा।
हेलो वैष्णवी। ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग, फेस्टिव टाइम टू। सो यू ऑलरेडी मेंशनड इट, द फेस्टिवल कमेमोरेट्स विद द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द बफेलो डीमन महिषासुर, सिंबलाइजिंग द triumph of good over evil. So Vaishnavi, let's make the most of it with our news magazine show. So let's start the program. We begin with some news headlines.
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। साथ ही इसका सीधा प्रसारण आप आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stated that India has a neighbor that is an epicenter of global terrorism and it has confronted the challenge of terrorism since independence. In his address at the general debate of the 80th session of the UN General Assembly, Dr. Jaishankar underlined that for decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. He further stated that UN's designated list of terrorists are replete with its nationals. He gave the example of the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. He said India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice.
The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, it is essential that there is much deeper international cooperation.
और हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिमी हिमालय में लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब सोचिए ये उच्च ऊंचाई वाला रिजर्व अपने ऊबड़ खाबड़ भूभाग, अल्पाइन घास के मैदानों और दुर्लभ वन्य जीवों जैसे हिम तथा हिम तेंदुआ जो हम अक्सर देखते हैं और साथ ही हिमालय आईबॉक्स के लिए जाना जाता है। इसे वर्ष 2009 में पहली बार राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और अब ये शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट वैश्विक नेटवर्क में भारत का 13वां स्थल है। इसमें पाइन वैली राष्ट्रीय उद्यान और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं और ये लगभग 12,000 लोगों का घर भी है।
Vice President C.P. Radhakrishnan will be on a day-long visit to Bihar today. After arriving at Patna, Mr. Radhakrishnan will play floral tribute to Lok Nayak Jayaprakash Narayan at Jayaprakash Golambar in Patna this morning. He will participate in the valedictory ceremony of the third edition of Unmesh, a Sahitya Academy program in Patna. Renowned as one of Asia's largest literary festivals, this event has brought together over 600 literature, artists and theatre personalities from India and abroad, representing more than 90 languages and dialects. The Vice President will also offer prayers at Chamunda Devi Temple at Khatra Muzaffarpur in the afternoon.
तमिलनाडु के करूर में कल एक रैली में मची भगदड़ में मृतकों की संख्या अब 36 हो गई है। 50 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जिन लोगों का आईसीयू में इलाज हो रहा है उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में आयोग गठित किया है। ये रैली फिल्म अभिनेता, कलाकार और राजनीतिक नेता विजय की तमिलागा वेत्री कड़गम पार्टी ने आयोजित की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है।
Guided by the mantra of Seva and Sushasan, that is public service and good governance, the government under Prime Minister Narendra Modi has been working tirelessly to bring transformation and progress. Today in this special series, Seva Parv, we'll bring you how the Modi government has strengthened social security for India's unorganized workforce through the Atal Pension Yojana.
Narendra Modi government has given special attention to the needs of India's unorganized workforce. The Atal Pension Yojana was launched in May 2015 to address the twin challenges of longevity risks and lack of retirement security in the unorganized workforce. Prime Minister Narendra Modi has outlined how the scheme will be the future of the subscribers.
अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उसमें पैसे डालेगी और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी। आपका बुढ़ापा भी सीख जाए और आप जो पैसा जमा कराएंगे आपके स्वर्गवास के बाद वो पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगा।
The scheme is designed to encourage voluntary savings for retirement by offering defined pension benefits linked to the age of joining and amount of contribution, targeted primarily at the poor and underprivileged workers in the informal sector. The scheme has emerged as one of the most inclusive and accessible social security initiatives in the country. Earlier this year, the pension scheme has surpassed 8 crore subscribers and mobilized a total corpus of over 45,000 crore rupees. It has recorded increasing participation from women, who now comprise almost 48% of all subscribers. The subscribers appreciate the security provided by this scheme.
अटल पेंशन योजना प्रधान मंत्री जी ने निकाली थी ये, इसमें मैंने सेवा का लाभ लिया हुआ है। इस बैंक के खाते द्वारा मेरा पैसा कटता है। जब स्कीम लॉन्च हुआ था तब से मेरा कट रहा है पैसा। आगे जाके ये आदमी की बचत का बहुत बड़ा रूप बनेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।
The Atal Pension Yojana has emerged as a cornerstone of India's social security ecosystem. The government's continued focus on digital integration, women participation and rural outreach has helped broaden the scheme's footprint across India.
और सुभद्रा आप खेल के मैदान में चलते हैं और जानते हैं वहाँ की कुछ ताजा हलचल। तो एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगे।
Okay, and Rashnavi, this is, I'm going to football now. In India clinched their 7th SAF U17 championship crown, holding their nerves to edge past Bangladesh 4-1 in a tense penalty shootout in Colombo yesterday.
रुक करते हैं प्रमुख महानगरों की ओर और जानते हैं वहां की हलचल, साथ ही वो मुख्य खबरें जिनका आपसे है सरोकार। तो आइए जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं सुभद्रा के पास।
यस ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ Brackish Water Aquaculture has developed an indigenous super intensive and sustainable shrimp farming system for El Vaname. This precision technology integrates smart feeding, intelligent aeration, biosecurity, natural in-situ feed, minimal water use and low energy consumption. Successfully demonstrated at Seabar's Muthukkadu facility with 13 disease-free cycles, it achieved up to 97.8% survival rates, FCR below 1.2 and yields of 40 to 50 tons, far surpassing the 6 tons of conventional farm. The system has now been transferred to industry. Getting to some Bengaluru news now, Bengaluru police arrested 41 members of the pro-Kannada group Karnataka Rakshana Vedike for disrupting a central government meeting of Hindi promotion at the Taj Westin Hotel. Disguised as customers, the protesters entered the venue, raised slogans and briefed halted proceedings. Police swiftly intervened, detained the protesters and restored order. The meeting resumed shortly after without further incident. Frustrated by worsening road conditions, residents of Harthi Nagar in East Bengaluru held a symbolic puja for a pothole on Webster Road, praying it doesn't claim more lives. Around 20 to 25 citizens decorated the crater with flowers and hired a priest to conduct rituals. The unusual protest comes amid a citywide pothole filling drive by civic authorities. And let's move to Hyderabad now. On World Tourism Day, Chief Minister A. Revanth Reddy said Telangana has the potential to attract 50,000 crore rupees in tourism investments, urging equal focus on the sector as given to IT and pharma. Speaking at the Telangana Tourism Conclave in Hyderabad, he announced that the state has already received 15,000 crore investment proposals under its new tourism policy. 30 projects are planned, expected to generate over 50,000 jobs, with funding from both public-private partnerships and private investors. New initiatives include film tourism, a medical tourism zone, destination wedding spots, a culinary accelerator and a tourist police task force for enhanced safety. And Vaishnavi, what about news from other cities?
Ji bilkul, rashtriya rajdhani Delhi ki baat kare to Delhi ke mukhyamantri Rekha Gupta ne kal Lado Sarai mein Dakshin Asia ke pehle entrepreneurs organization house ka udghatan kiya. इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और देश के युवाओं में नवाचार और स्टार्टअप्स का कल्चर इसे वैश्विक पहचान दिला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया विश्व पटल पर भारत की नई ताकत बनकर उभर रहा है और इस बदलाव में दिल्ली भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 चल रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक आयोजन में 90 से अधिक देश और 2000 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्देश्य भारत को खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य आपूर्ति के लिए वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। इस बार के आयोजन में न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देशों के रूप में और जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस फोकस देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। और आपको बताते चलूं तो आज इस आयोजन का अंतिम दिन है। अब मुंबई की ओर रुख करते हैं। सितंबर के अंत तक तेज वर्षा से मुंबई को पेयजल आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में जल भंडार 14.34 लाख मिलियन टन लीटर तक पहुंच गया है, जो कुल क्षमता का 99% से अधिक है। ये अगले मॉनसून तक शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए अधिकारियों ने पानी में किसी भी तरह की कटौती की जरूरत से इनकार किया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नागरिक जागरूकता और स्वच्छता अभियान शुरू किया है। ये अभियान 29 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शहर और उपनगरों में चलाया जाएगा। इसमें ठोस अपशिष्ट अप्रबंधन और जल निकासी विभाग के स्वैच्छिक कार्यकर्ता और नागरिक शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से मलबे को एकत्र करना और उसका उचित निपटान करना है। और अब मौसम का हाल जान लेते हैं सुभद्रा।
Yes, of course. You want to start first or I will start?
जी बिल्कुल, दिल्ली से शुरुआत कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की आसार है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल ही छाए रहेंगे, तेज बारिश हो सकती है और गरज के साथ तूफान की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। और अब सिटी ऑफ जॉय की बात कर लेते हैं, कोलकाता की। तो कोलकाता में भी वर्षा हो सकती है और आंधी की भी संभावना है। बात करें तापमान की तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Yes, Vaishnavi, we want some rain here in Delhi also, right? It's becoming very hot these days. Anyway, Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius, maximum would be around 36. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. Right? And now before we get to the event, there are two important days today, Vaishnavi. Let's first talk about that. And the first one is the right to access information. Of course, it's a universal human right and a fundamental component of freedom and of expression, allowing citizens to seek, receive and share information from all over to promote transparency, accountability. So this year marks the 10th anniversary of the designation of 28 September as the International Day for Universal Access to Information, established by UNESCO in the year 2015. And this also reflects a decade of progress and challenges in the right to information worldwide. The UN theme this year is ensuring access to environmental information in the digital age. And the second one is about, it's a deadly disease. It's called rabies. Today is World Rabies Day. Of course, timely prevention can prevent rabies deaths. The day is observed on this day to make people realize the importance of vaccinating their pets, doggies and cats, and also all the strays that loiter about the streets. It is a chance to unite as a community and for individuals, NGOs and governments to connect and share their work. And the theme this year is to call to join together, take up this challenge of eradicating the issue. Act now, you, me, community. Yes, friends, that's the theme.
जी सुभद्रा, आप इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। तो भारत पर सदियों तक मुगल वंश ने शासन किया, जिसने कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1837 में आज ही के दिन मुगल राजा बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। वे मुगल वंश के अंतिम सम्राट बने और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन नाम मात्र के शासक रहे।
एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी द कॉन्करर। दिस हैपेंड इन 1066, रियली वे बैक। ही लैंडेड इन साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड, दस बिगिनिंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट व्हिच रिजल्टेड इन हिम बिकमिंग द किंग। And also 1542, explorer Juan Rodriguez Cabrillo, known as the discoverer of California, landed this day near, of course, in 1542. What is now San Diego became the first European to set foot on the west coast of what would become the United States.
जी सुभद्रा, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलती हूँ। तो चीन की हुआंग हो नदी प्राचीन काल से सभ्यता का आधार रही, लेकिन इसकी बाढ़े विनाशकारी रही है। 1837 में इस नदी में आई भयानक बाढ़ ने इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक को जन्म दिया। बाढ़ से लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई और अनुमानित 9 लाख से 20 लाख लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने चीन की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को गहरा आघात पहुंचाया। और अब 1950 की ओर चलते हैं। तो 1950 में आज ही की तारीख को इंडोनेशिया को संयुक्त राष्ट्र का 60वां सदस्य बनाया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्वतंत्रता संघर्ष की जीत का प्रतीक था। नीदरलैंड से आजादी के बाद ये कदम इंडोनेशिया को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति प्रदान करने वाला था।
1924 द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड इज कम्प्लीटेड आफ्टर 175 डेज एंड 1928 स्कॉटिश मेडिकल रिसर्चर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड penicillin, the first effective antibiotic, and 2004 this day friend the World Bank named India as the fourth largest economy in the world.
जी, और 2006 में आज ही के दिन सिंजो आबे ने जापान के 90वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो सबसे कम उम्र के पीएम बने और इस पद पर एबे परिवार के दूसरे सदस्य थे। और 2007 में आज ही के अगर इतिहास के पन्नों पे खगोला जाए तो आज ही के दिन नासा ने विशेष यान डॉन का प्रक्षेपण किया था। इसका उद्देश्य शूद ग्रह वेस्टा और बौने ग्रह सिरिस का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था।
Alright, let's move to some personalities now. What are we starting with, Vaishnavi? You want to start? Because you have something very big today, right?
जी बिल्कुल, आज एक ऐसी खास शख्सियत की जन्मदिन है।
Yes, singing queen of our land.
बिल्कुल बिल्कुल। किसने सोचा होगा कि 28 सितंबर 1929 को इंदौर में दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी हो हेमा अपने गीतों से पूरी दुनिया में सुरों का वो राग छेड़ेंगी कि ये दुनिया उनके गीतों की दीवानी हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की कोकिला और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में। लता ही तो थी जो कभी हमको हमी से चुराती थी, लग जाओ गले कल यह हंसी रात हो ना हो बताती थी। वो लता ही तो थी जिन्होंने जिंदगी को प्यार का नगमा बताया, जब देश मुश्किल में था तो आंख में भरने को पानी सुनाया, जिनके गीतों में मोहब्बत में रवानी आई, जिन गानों को सुन सुनकर एक पीढ़ी ने अपनी जवानी गुनगुनाई। वो लता ही तो थी जिसने ना कितने कोरे कागजों में शब्दों में जान डाली है, न जाने कितने दिलों में आज फिर जीने की तमन्ना जागी है। और सुभद्रा, मैं एक चीज तो बोलना चाहूंगी कि अगर लता मंगेशकर को जानना है तो सबसे सुंदर तरीका है कि उनके गीतों को कानों से सुनो, नजरों को भरो और दिल में उतारो। उनके सुनने का सबसे सुंदर उनके गीतों को सुनने का सबसे सुंदर यही अंदाज है। और लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज और सितारों की चमक और चांदनी की ठंडा का एक अनूठा संगम है जो आज भी हमारे दिलों में एक जादुई तार छेड़ रही है। उनका जन्मदिन महज एक तारीख नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है, जैसे कोई मधुर धुन हवाओं में तैरती हुई हर आत्मा को छू ले। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गीत गाए, लेकिन हिंदी और मराठी में उनकी पहचान सबसे गहरी रही। लता मंगेशकर की उपलब्धियां किसी सफलता की पटकथा से कम नहीं है। उन्हें पद्मभूषण, दादा साहब फाल्के और भारत रत्न जैसे सम्मान उनकी नाम की माला में मोती हैं।
Yes, friends. Lata would have turned 96 today had she been around. Of course, she left this world and a million fans 3 years ago, way back in 2022. And friends, now tributes to jazz great Miles Davis, who passed away in Santa Monica, California this day in the year 1991 at the age of 65. trumpeter, band leader, composer with a huge catalog of precious jazz tunes. He also founded modern jazz, so he has a whole platoon of musicians, followers who shaped the course of modern improvisational music. Texas-born roots scholar, singer-songwriter, poet, actor Kris Kristofferson left us this day last year at the age of 88. Kris brought in a new flavor to American country music by elevating simple traditional country with poetic lines, personal songs, social activism as well.
On the Sunday morning sidewalk, wishing Lord that I was stoned. There's something in a Sunday makes a body feel alone.
क्या आपने कभी सोचा कि एक युवा जिसकी उम्र महज 23 साल थी कैसे एक पूरे राष्ट्र को अपनी नन्ही से जिंदगी से प्रेरित कर गया? आज 28 सितंबर 2025 को हम याद कर रहे हैं उस शहीद आजम भगत सिंह को, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी बल्कि अपनी कुर्बानी से हर भारतीय के दिल में आजादी की चिंगारी जलाई। उनकी कहानी केवल वीरता की नहीं बल्कि विचारों की क्रांति और सामाजिक बदलाव का एक अनमोल दस्तावेज है। बचपन में ही जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें हिला दिया और 13 साल की उम्र में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वे कूद पड़े, लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके बाद गांधी जी के आंदोलन ने वापस ले लिया और भगत का मन अहिंसा से हटकर क्रांतिकारी रास्ते की ओर मुड़ा। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। इंकलाब जिंदाबाद, जी हाँ, यही नारा दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से पूरी असेंबली में ये आवाज गूंज उठी थी। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में, जी हाँ, कितनी सोचिए, कितनी छोटी उम्र होती है ना, कोई हमें उस समय कोई समझ नहीं होती, लेकिन मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ताकत दी। इसी से जुड़े उन पे एक फिल्म भी बनाई गई थी, तो आइए उसी का सुनते हैं एक गीत।
मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे।
1938, this day, birth anniversary of American rhythm and blues singer Ben E. King, lead singer of the Drifters, later on a successful solo career he embarked, of course, with Spanish Harlem, that reached top 10. Stand By Me, which he co-wrote, reached the top 10 in 1961. The song continues to be popular, friends, thanks to the sentiments expressed. Indeed, the message behind Stand By Me goes beyond the territorial and cultural boundaries. The song comforts listeners. There is peace, there is love, there is strength, and there is loyalty. Stand By Me. Let's hear a few lines.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
और सुभद्रा, आज बॉलीवुड के खास शख्सियत का भी जन्मदिन है। कल्पना कीजिए, बॉलीवुड का वो शरारती लड़का जो कभी वेकअप सिड में सपनों का पीछा करता नजर आया, तो कभी रॉकस्टार में जुनून की आग बन गया, आज अपनी जिंदगी के 43वें साल में कदम रख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के डैशिंग हीरो रणबीर कपूर की, जिन्होंने अपने डेब्यू फिल्म सांवरिया से ही लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन असली कमाल तो ये जवानी है दीवानी, बर्फी, संजू और हालिया में आई एनिमल जैसे हिट्स देखा गया, जहां उन्होंने हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो सुभद्रा, मुझे उनके कई सारे सॉन्ग्स पसंद है, लेकिन रणबीर कपूर का ये सॉन्ग मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद है।
शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बारी उड़ान पे ही ना जाने क्यों हिलाई।
पॉप सिंगर जेनिफर रश सेलिब्रेट्स हर बर्थडे टुडे। बॉर्न हेडी स्टर्न इन न्यूयॉर्क सिटी, दिस डे इन द ईयर ऑफ कोर्स 1960 शी मूव्ड टू जर्मनी इन द बिगिनिंग ऑफ 80s, वेयर शी हैड अ सक्सेसफुल म्यूजिकल करियर। हर वेरी पॉपुलर सॉन्ग इज पावर ऑफ लव, हियर गोस। इट्स रीच्ड द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द बेस्ट सेलिंग डिस्क ऑफ अ वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्डिंग म्यूजिक इंडस्ट्री इन ग्रेट ब्रिटेन। हियर गोस।
आज पुण्यतिथि है ब्रिजेश मिश्रा की, भारतीय कूटनीति और विदेश नीति के एक ऐसे स्तंभ जिन्होंने देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और ब्रिजेश मिश्र भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव थे। और सुभद्रा, समय हो चला है।
Yes, of course. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.